नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े हिस्सों में तेज बारिश की आशंका। और खेलों में टेनिस में आर्ना सबलेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेन देन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूपीआई केवल तकनीकी नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। प्रधानमंत्री ने भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली के वैश्विक विस्तार का जिक्र करते हुए बताया कि यूपीआई अब 11 देशों में उपलब्ध है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया की सफलता की कहानी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है।
डिजिटल इंडिया की सक्सेस स्टोरी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है। हमारी फिनटेक सक्सेस स्टोरी की अब तक की सफलता स्केल है, स्कोप है, सिक्योर सिस्टम है, डेमोक्रेटाइजेशन अब टेक्नोलॉजी है और जनता का ट्रस्ट है। इन्हीं कोर वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए फिनटेक सेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन पर फोकस करना है।
श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान के लिए अगले रणनीतिक चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यूपीआई को साझेदार देशों की घरेलू भुगतान प्रणालियों के साथ तत्काल एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है और भारत इस दौर में भी 7.8% की दर से विकास करता है तो विश्व को एक नया भरोसा मिलता है।
दुनिया कॉन्फ्लिक्ट और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है। भारत पर इस बढ़ते भरोसे का एक और उदाहरण हमारी सॉवरिन रेटिंग्स भी है।
प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने से लोगों को स्वदेश में अपने परिवारों को धन भेजने में काफी तेजी आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच सेतु बताया है। उन्होंने कहा कि वो दोनों राष्ट्रों के बीच मित्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री सिंह कल श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर कोलंबो पहुंचे। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत में कहा कि भारत संकट के समय में हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्री राजनाथ सिंह ने भारत के तीव्र आर्थिक परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि देश विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। पिछले 10-12 सालों में अब हमारी इकोनॉमी की साइज 2 गुनी हो गई है और आज सारी दुनिया इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जब चैलेंजेज का सामना कर रही है उस समय भारत की GDP ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 7.8% है।
श्री सिंह रक्षा और विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बंदरनायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर श्रीलंका के उपरक्षा मंत्री सेवानिवृत्त मेजर जनरल अरुणा जयसेकरा ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया। भारत और कुवैत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत हो गए हैं। कुवैत में कल 8वीं भारत कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श बैठक में ये सहमति बनी। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव असीम महाजन और कुवैत के विदेश मंत्रालय में एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री नवाफ अब्दुल लतीफ सुलेमान अल अहमद ने बैठक की सह अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने कई क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इन क्षेत्रों में राजनीतिक संबंध, व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंध शामिल हैं। दोनों पक्षों ने सहयोग के लिए संयुक्त आयोग के तहत संयुक्त कार्य समूह की बैठकों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष नई दिल्ली में आपसी सहमति वाली तारीख पर विदेश कार्यालय परामर्श का अगला दौर आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत और कुवैत के बीच लंबे समय से संबंध रहे हैं, जिन्हें दिसंबर 2024 में रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कुवैत में रहने वाले 10.5 लाख भारतीय दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमेरिका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उनके एक युद्धपोत पर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले पिछले 2 दिनों में अमरीकी पोत पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने के ईरान के 2 प्रयासों के जवाब में किए गए। ओमान की खाड़ी में नष्ट किए गए ईरानी जहाजों में केवेक, चारमीनार, होराइजन 1 और रिस्को शामिल थे। कनाडा ने अमेरिका की 600 से ज्यादा चीजों पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया है। इससे इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार विवाद बढ़ गया है। अमरीकी सामान पर ये शुल्क आधिकारिक रूप से कल रात से लागू हो गए। एक रिपोर्ट।
कनाडा के वाणिज्यिक उद्यम फेडरल सरकार के नए लागू किए गए डॉलर के बदले डॉलर शुल्क के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 28 अरब डॉलर मूल्य का अमरीकी आयात शामिल है। अमरीका के 600 से अधिक उत्पादों पर 15-50% तक शुल्क लगाया गया है। प्रभावित सामानों में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे औद्योगिक सामान, टॉयलेट पेपर जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और कॉइन ऑपरेटेड आर्केड मशीन जैसे विशेष उत्पाद शामिल है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे सरकार के मुख्य खरीद कैटलॉग के जरिए कनाडाई उत्पादों की खरीद तब तक रोक दे जब तक कनाडा अमेरिकी कारोबारियों और किसानों को अपने बाजार में सामान की पहुंच नहीं देता। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
छत्तीसगढ़ में कांकेर अदालत ने 2015 में सुरक्षा बलों पर हमले से जुड़े मामले में 5 माओवादियों को सजा सुनाई है। इनमें कट्टर नक्सली प्रभाकर और उसकी पत्नी राजे कांगे भी शामिल हैं। दंडकारणीय स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर प्रभाकर और डिविजनल कमेटी सदस्य उसकी पत्नी राजे कांगे को 7-7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। इस मामले में शामिल 3 अन्य माओवादियों को 5-5 वर्ष की जेल की सजा दी गई। वर्ष 2015 में माओवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों की उस टीम पर हमला किया था जो कोरार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
इस कॉरिडोर से रोज करीब 75 से 80 हजार वाहनों के गुजरने की उम्मीद है। इसे नीचे की मौजूदा सड़क पर करीब 60% ट्रैफिक कम होने की उम्मीद है। इसे मापुसा पणजी के व्यस्त रास्ते पर ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही पर्यटकों और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही भी आसान होगी। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी।
इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की थीम हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखी गई है। पोषण माह 2026 में आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही, पोषण एवं प्रारंभिक बाल विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के 10 वर्ष पूरे होने को प्रमुखता दी जाएगी। वाराणसी में होने वाले शुभारंभ कार्यक्रम में पोषण मेले का आयोजन होगा। लाभार्थियों के अनुभव पर आधारित वीडियो का प्रदर्शन होगा। उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के बीच संवाद इसका प्रमुख आकर्षण होंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रूपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रूपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े भाग में वर्षा होने का अनुमान है। मौसम के मॉडलों ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में होने जा रही वर्षा कमजोर पड़ते मानसून चक्र को अस्थायी रूप से पुनर्जीवित कर सकती है। इसके कारण सितंबर के उत्तरार्ध में देश के कई भागों में बौछारें पड़ सकती हैं और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज तेज वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी तेज हवा के साथ गरज चमक की संभावना व्यक्त की है। खेलों में यूएस ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स की मौजूदा चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त अरीना सबालेंका तथा पुरुष सिंगल्स में फ्रांसिस टियाफो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अरीना सबालेंका ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल में चेंगड़ राज्य की 6वीं वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
अपडेट रहे, आगे रहे। @AIRNewsHindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
धन्यवाद फरहत। वडोदरा में माल ढुलाई गलियारे के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्षी पार्टियां अब नए नए मुद्दे उठाएंगी। ब्रिक्स घोषणा पर सहमति बड़ी चुनौती, यूएई, ईरान आमने सामने, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, आतंक और वित्तीय मामलों पर भी जोर, कृषि, बीज और ऊर्जा पर साझेदारी को लेकर विशेष बातचीत होने की संभावना। देश भर में इमारतों की जांच पर विचार कर रहा शीर्ष कोर्ट, दिल्ली में 17 संपत्तियों पर चला बुलडोजर, अमर उजाला की खबर है। हिंदुस्तान ने श्रीनगर की शांत डल झील पर 4 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के आगाज होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, कश्मीर की डल झील पर शिकारी, ठहरी शाम और सिनेमा का जादू।
धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। और टेनिस में अरीना सबालेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।